الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. اگر شور کا مسئلہ محسوس ہو تو بتا دیے گا، اے سی چونکہ گرمی آ گئی ہے تو اے سی چلایا ہوا ہے کہیں پر، بند کر دیں گے پھر. تو یہ جو آیات ابھی تلاوت کی گئی، یہ مجموعہ آیات ہے نمبر 77 سے 82 تک سورہ یوسف کا، اور ہم قرآن جو نمبر 5 میں سے اس کی تفسیر پڑھ رہے ہیں. پچھلی کلاس میں ہم نے ان کا ترجمہ خلاصہ تفسیر تقریباً آدھی پڑھ لی تھی، تو وہاں سے ہم آگے چلاتے ہیں کہ یہ جب یہ عزیز نے یعنی یوسف علیہ السلام نے جو معاملہ کیا کہ بنیامین کو رکھنے کے لیے یہ چوری والا جو ہے وہ الزام ان کے اوپر ان کی رضامندی کے ساتھ لگایا، تو اس کے بعد پھر جو بڑا بھائی تھا ان میں سے تو اس نے کہا کہ تم کالا کبیر کے سب سے بڑے نے کہا کہ کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ بے شک ہمارے باپ نے تم سے جو ہے وہ تمہارے باپ نے تم سے میثاق لیا تھا، عہد لیا تھا، اللہ کے نام کے اوپر عہد لیا تھا، اور اس سے پہلے بھی جو ہے نا وہ یوسف کے معاملے میں تم ایک قصور کر چکے ہو، گڑبڑ کر چکے ہو. تو یہ لوگ آپس میں بیٹھ کر کے جو ہے وہ مشورہ کر رہے تھے. تو ہم یہی بات اس بات کے اوپر ہی ہم نے آخری کلاس ختم کری تھی کہ اس طریقے سے جو باقاعدہ قسم لے لی جاتی ہے، عہد لے لیا جاتا ہے، جس کو ہمارے ہاں زبان دینا یا زبان لینا بھی کہا جاتا ہے، تو اس کا ایک ہیومن سائیکالوجی کے اوپر، انسانی طبیعت کے اوپر نا اس کا ایک اثر ہوتا ہے. تو لوگوں کو اس کی فکر ہو جاتی ہے کہ ہاں بھی اس بات کے اوپر تو میں نے قول دیا ہوا ہے، میں نے زبان دی ہوئی ہے، انلیس کہ وہ بالکل ہی ہمارے جیسے ہوں. ہمارے جیسے سے مراد یہ ہے نا کہ بھائی وہ وعدہ ہی کیسا جو توڑا نہ جائے، اور وہ امانت ہی کیسی جو واپس کر دی جائے. تو آج کل تو یہ والا معاملہ شروع ہو چکا ہے، لیکن وہ بھی الحمد للہ آج بھی ایسے لوگ ہیں موجود کہ جن کے لیے جو ہے نا وہ امانت کی ایک ایک پاسداری ہوتی ہے، وعدے کی فکر ان کو ہوتی ہے. تو ان لوگوں کے لیے بات ہے کہ اگر وہ زبان دے دینا تو وہ زیادہ کیئرفل ہو جاتے ہیں اس میں. تو فرمایا اسی وجہ سے پھر بات ہوئی تھی کہ مشائخ جو ہیں وہ، یعنی بلکہ مشائخ ہی خالی نہیں، ایون دوسرے نظاموں کے اندر بھی بیعت کا سلسلہ ہوتا ہے. بہرحال آگے چلیں کہ فرماتے ہیں کہ کیا تم کو معلوم نہیں کہ تمہارے باپ تم سے خدا کی قسم کھلا کر پکا قول لے چکے ہیں کہ تم اس کو اپنے ہمراہ لانا، لیکن اگر گھر جاؤ، گھر جاؤ یعنی کسی مصیبت میں پھنس جاؤ تو مجبوری ہے، سو ہم سب کے سب تو گھرے نہیں کہ تدبیر کی گنجائش نہ رہتی، اس لیے حتی الامکان کچھ تدبیر کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی ٹھیک ہے عزیز کے سامنے ابھی ہمارے پاس کوئی جواب نہیں تھا، عزیز نے ہمیں پھنسا لیا ہے، یعنی ہمارے ہی قانون کو ہمارے ہی خلاف استعمال کر لیا ہے، تو لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی گنجائش جو ہے وہ ہوگی، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، تدبیر کرنی چاہیے. اور اس نے یہ بھی کہا بڑے بھائی نے کہ اس سے پہلے یوسف کے بارے میں کس قدر کوتاہی کر چکے ہو کہ ان کے ساتھ جو کچھ برتاؤ ہوا اس سے باپ کے حقوق بالکل ضائع ہوئے. सो वो पुरानी ही शर्मिंदगी क्या कम है जो एक नई शर्मिंदगी लेकर के जाए, यानी यूसुफ के साथ जो तुमने किया, तो वो हमारे पास ऑलरेडी है। नहीं, ये गिल्टी कॉन्शियंस जो होता है ना, इट्स इज इट्स ओन एक्यूजर। तो गिल्टी कॉन्शियंस जो होता है वो इंसान को मलामत करता रहता है, तो इनके अंदर भी वही कॉन्शियंस तो था। बहरहाल ईमान वाले थे, नबी के जो है वो बरखुरदार थे, और जाहिर नबी के घर में रहते थे, और इसका एक असर तो होता है ना। तो इस वजह से इनका जो नफ्स था ना वो कम्प्लीटली अमारा वाला नफ्स नहीं था, बिल्कुल जो 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 सिर्फ और सिर्फ गुनाह की दावत देता है और उसके अंदर कोई खैर नहीं होती, वो नफ्से अमारा होता है, ठीक है ना। तो नफ्से मुतमइन्ना जो है, सॉरी, नफ्से लवामा जो होता है वो बुरे काम करता भी है लेकिन साथ साथ मलामत भी होती है। तो इनके अहवाल देख करके ऐसा लगता है कि ये नफ्से लवामा की हालत में थे, ठीक है। तो इनको मलामत तो एक थी कि यूसुफ के साथ हमने जो है ना वो क्या किया है। तो फरमाते हैं कि जब पहली शर्मिंदगी क्या कम है जो एक नई शर्मिंदगी लेकर के बाप के पास जाए, सो मैं तो इस जमीन से नहीं डरता ता वक्त है कि मेरे बाप मुझको हाजिरी की इजाजत ना दे दें, यानी वो मुझे बुला लें कि भाई जो भी हुआ बस हो गया, वापस आ जाओ तुम, ठीक है, या अल्लाह ताला इस मुश्किल को सुलझा दे, और वही खूब सुलझाने वाला है, ठीक है। यानी किसी तदबीर से बिन्यामीन बुन्यामीन छूट जाए। किसी तदबीर से यहाँ पर मुराद ये कि हमारी तदबीर से नहीं बल्कि अल्लाह ताला कोई तदबीर कर दे, अल्लाह ताला कोई रास्ता निकाल दे, और सबसे अच्छा रास्ता निकालने वाले, सबसे ज्यादा हिकमत वाले तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ही है, ठीक है। तो देखें, इनको गलतियों के बावजूद जो है ना इतनी अकल इतनी समझ थी कि जब असबाब खत्म हो जाते हैं, जब हम बेबस हो जाते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ रुजू करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत बेबस नहीं हो जाता। हमें जो भी जुम्मे को भी बात हुई थी ना, हम तो पेप्सी पी करके बेबस बेबसी हो जाती है, ठीक है, हमारी बेबसी हो जाती है, लेकिन अल्लाह ताला के पास तो किसी किस्म की कोई बेबसी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो अपने मामला जो है ना वो अल्लाह पे छोड़ना, अल्लाह की तरफ रुजू करना, बजाय इसके के उल्टे सीधे हरकतें करके जो है वो ना किसी तरीके से जो है वो अभी भी लगे हुए हैं तदबीर करने में, सीधी तरह से घी नहीं निकल रहा तो उल्टी तरीके से घी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हुक से अगर काम नहीं हो रहा तो क्रुक से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ये ईमान वाले का जो अल्लाह पे यकीन रखता है, अल्लाह पे जिसका एतमाद है, अल्लाह के निजाम को जो देखता है, तो वो ये काम नहीं करता, ठीक है। तो बहरहाल हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि भाई इस कॉन्सेप्ट को जरा सा अपने अंदर उतारें, ठीक है ना। जुबानी तौर पर तो यानी जुबानी कलामी तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत दफा सुनते रहते हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर पड़ती है तो उस वक्त जो है ना फिर हमारा भी वजू टूट जाता है, और हम वही जो है ना वो उल्टा काम करना शुरू हो जाते हैं। तो इन्होंने कहा जी वल्लाहु खैरुल हाकिमीन, तो वही खूब सुलझाने वाला है, यानी किसी तदबीर से बुन्यामीन छूट जाए, गर्ज मैं या उसको लेकर जाऊंगा या बुलाया हुआ जाऊंगा, ठीक है। सो मुझको तो यहाँ छोड़ो और तुम वापस अपने बाप के पास जाओ, और जाकर उनसे कहो कि ए अब्बा, आपके साहेबजादे बुन्यामीन ने चोरी की, इसलिए गिरफ्तार हुए, और हम तो वही बयान करते हैं जो हमको मुशाहदे से मालूम हुआ है, ठीक है ना। हम कोई वमा कुन्ना लिलगैबि हाफिज़ीन, हम कोई गैब का इल्म रखने वालों के थोड़ी हैं। तो जो हमारे सामने हुआ, और वाकई बुन्यामीन ने जो है वो डिनाई भी नहीं किया, बुन्यामीन ने ये तो नहीं कहा कि नहीं 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 ये झूठा इल्जाम मेरे ऊपर लगा रहे हैं और मैंने चोरी को थोड़ी करी है, ठीक है। तो हम तो भाई दिनों का हाल नहीं जानते, हम तो गैब की खबर नहीं जानते, तो सामने सामने जो हुआ है बस वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो मैं अच्छा, तो हमको जो मुशाहदे से मालूम हुआ है, और हम कौलो करार देने के वक्त गैब की बातों को तो हाफिज थे नहीं, यानी हमने इहाता नहीं किया हुआ था अपने अंदर कि कल को क्या होने वाला है, परसों को क्या होने वाला है, और जो है ना वो बुनियामीन को किस तरीके से जो है वो वहाँ पे रहना पड़ जाएगा वगैरह, कि ये चोरी करेगा, वरना हम तो कभी कभी कॉल ना देते, नहीं, हमने आपसे वादा किया था तो हमने तो ये सारी चीजें कंसिडर नहीं करी थी ना। और अगर हमारे कहने का यकीन ना हो आपको, तो इस बस्ती यानी मिस्र वालों से किसी अपने मोतमेद की मार्फत पूछ लीजिए, यानी किसी को भिजवा दीजिए, मिस्र ज्यादा दूर तो नहीं है, पूछवा कर के किसी को वापस बुलवा लीजिए, जहां उस वक्त मौजूद थे, ये भी सारा मामला हुआ था। जब चोरी बरामद हुई है और स्टाफ ने वालों से पूछ लीजिए जिसमें हम शामिल होकर यहाँ आए हैं, ठीक है, तो आप अपनी तहकीक जो है ना वो खुद करवा लीजिए। जैसे हम भी यही करते हैं ना कि कभी ऐसा कोई मामला हो जाता है तो हम कहते हैं कि भाई आप हमारी बात पर अगर यकीन नहीं करें तो कोई बात नहीं, आप अपनी तहकीक जो है वो खुद करवा लीजिए। गाड़ी खरीदने के लिए जाते हैं तो वो गाड़ी बेचने वाला कहता है कि भाई आप खुद उसको अपना मैकेनिक ला करके गाड़ी को जो है वो खुद चेक करवा लीजिए, ठीक है। तो यही जो है ना वो अपने वाले साहब को भी यही कह रहे हैं आप खुद तहकीक करवा लीजिए। मालूम होता है और भी कनान के या आसपास के लोग गल्ला लेने गए होंगे, ठीक है, यानी काफले में और भी लोग थे, रहते जब तहत पड़ा तो पूरे इलाकों में पड़ा था ना, तो सभी गए होंगे गल्ला लेने के, तो उनसे तहकीक कर लीजिए और यकीन जानिए कि हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। चुनाचे सब ने बड़े को वहां छोड़ा और खुद आकर सारा माजरा बयान किया। तो अब जो है ना वो वापस याकूब अलैहिस्सलाम के पास बाकी भाई आ गए। अब आयात और तर्जुमा वगैरह बाद में पढ़ेंगे, आगे की आयात का भी पहले मार्क को मसाइल पढ़ने हैं जिनमें माशाल्लाह इससे सारी बात है। लोग शफी रहमतुल्लाह ने हमको जदा खैर दे, करवट करवट जन्नत फिरदौस नसीब फरमाए, उन्होंने और मसाइल में क्या प्यारी प्यारी बातें लिखी हैं वो पढ़ लेते हैं। कि इनसे पहले आयात में मजकूर था कि मिस्र में यूसुफ अलैहिस्सलाम के हकीकी भाई बुनियामीन के सामान में एक शाही बर्तन छुपा कर और फिर उनके सामान से तदबीर के साथ बरामद करके उन पर चोरी का जुर्म आयद कर दिया गया था। मजकूरा आयात में से पहली आयत में यह है कि जब बरादरान यूसुफ के सामने बुनियामीन के सामान से माल मसरूका बरामद हो गया और शर्म से उनकी आंखें झुक गईं तो झुंझला कर कहने लगे, यानी भाई तो बहरहाल हम उनका ही था ना, तो भाई ने चोरी करी तो देखें बड़े भाइयों की आंखें शर्म से झुक रही हैं, तो ये बहरहाल रिश्ता तो था, अगरचे के वो कुछ जरा सौतेले वाला बर्ताव जरूर करते थे लेकिन फिर भी उसको ये तो नहीं कहते हमारा भाई नहीं है, ये तो नहीं कहते थे ना, तो शर्म से आंखें उनकी झुक गई होंगी, तो झुंझला के कहने लगे कि इन यसरक फकत सरक अखुन लहू मिन कब्ल, यानी अगर इसने चोरी की है ना, तो चोरी कर ली तो कुछ ज्यादा ताज्जुब की बात नहीं है, इसका एक भाई था उसने भी इसी तरह उससे पहले चोरी की थी, मतलब ये था कि ये हमारा हकीकी भाई नहीं अल्लाती है और उसका एक हकीकी भाई था उसने भी चोरी की, यूसुफ ने यानी चोरी की अलैहिस्सलाम। तो हुआ ये था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उस वक्त खुद यूसुफ अलैहिस्सलाम पर भी चोरी का इल्जाम लगा दिया, जिसमें एक वाकये की तरफ इशारा है जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बचपन में पेश आया था, जिसमें ठीक इसी तरह जैसे यहाँ बुनियामीन पर चोरी का इल्जाम लगाने की साजिश की गई है, उस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम पर उनकी बेखबरी में ऐसी ही साजिश की गई थी और ये सब भाइयों को पूरी तरह से मालूम था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम उस इल्जाम से बिल्कुल बरी है, मगर इस वक्त बुनियामीन पर गुस्से की वजह से उस वाकये को भी चोरी का करार देकर उसका इल्जाम उनके भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम पर लगा दिया। जैसे पीछे बात हो चुकी है कि जब इंसान वाकई गुस्से में होता है ना, ठीक है, तो उस वक्त जो है ना वो उसका जो दिमाग है ना वो सही तरह से काम नहीं कर रहा होता, ठीक है, तो गुस्सा और शहवत ये दो ऐसी रूहानी बीमारियां हैं कि जिसके अंदर जो है ना वो इंसान अजीब व गरीब किस्म से जो है ना वो रिएक्ट करता है, ठीक है। शहवत के वक्त जो है ना वो उसकी अकल जो है वो बल्कि किसका कॉल है, गालिबन अली रज़ा का कॉल या किसी और बड़े का कॉल है, कि जिस वक्त उसके ऊपर शहवत सवार होती है ना तो अकल उसकी रुख्सत हो जाती है, ठीक है। उसी तरीके से जिस वक्त जो है वो गुस्सा सवार होता है ना, ये भी ऐसी बीमारी है रूहानी बीमारी, कि जिस वक्त उसकी अकल जो है ना वो रुख्सत हो जाती है, वो सही तरह से यानी देख नहीं पाता, समझ नहीं पाता और सिचुएशन को गेज नहीं कर पाता, वो ऐसे बंदे के ऊपर भी गुस्सा निकालना शुरू हो जाता है कि जो जिसका कि वो तसव्वुर नहीं कर सकता कि उसके ऊपर वो गुस्सा निकाले अपना, ठीक है, ये गुस्से की बीमारी होती है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कि बजाहिर बहुत गुस्सा दिखाते, ठीक है ना, तो ऐसे लोग दो किस्म के होते हैं, दो किस्म के लोग होते हैं जो कि बजाहिर गुस्सा दिखाते हैं, एक वो होते हैं जो कि तरबियत के लिए गुस्सा दिखाते हैं, तरबियत के लिए, ठीक है ना, ये मुरब्बी लोग होते हैं, ये गुस्से की रूहानी बीमारी के मरीज नहीं होते हैं, बल्कि ये तरबियत की खातिर, बल्कि ऐसे ही लोग जो है वो तरबियत की खातिर भी गुस्सा करते हैं और ऐसे लोग जो है ना वो अल्लाह की खातिर भी गुस्सा करते हैं, यानी उनको वाकई गुस्सा आता है लेकिन वो जाती इनाद की वजह से नहीं होता कि किसी ने उनकी जो है वो इज्जत खराब कर दी है, किसी ने उनको रिस्पेक्ट नहीं दी है या किसी ने उनका हक अदा नहीं किया तो इस वजह से उनको गुस्सा आ रहा, नहीं, बल्कि उनको गुस्सा इसलिए आता है कि अल्लाह का हक अदा नहीं किया जा रहा, ठीक है, जैसे नबी अलैहिस्सलाम को शदीद गुस्सा आता था, नबी अलैहिस्सलाम को शदीद गुस्सा आता, रगे तन जाती थी नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक की, राइट, और सुर्खी मायल हो जाता था चेहरा मुबारक गुस्से के अंदर। वो किस वजह से गुस्सा आता था? अपनी जात की वजह से नहीं आता, अल्लाह के हुक्म के तोड़ को तोड़ता हुआ अगर किसी को देखते थे उसके ऊपर गुस्सा आता था। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम को गुस्सा आता था लेकिन अपनी जात की वजह से नहीं। लेकिन और दूसरा जो है, मुरब्बी जो तरबियत के लिए गुस्सा कर रहा होता है कि भाई ताकि जो मुरीद साहब हैं, सालिक साहब हैं, शागिर साहब हैं, वो सीधे हाथों सीधी उंगलियों से बात नहीं मान रहे हैं ना, तो जरा उनके ऊपर डांट पट की जरूरत है भाई, इस तरीके से वो बात मान जाए और वो अपने नुकसान से बच जाए। ठीक है, तो ये होता है एक किस्म के लोग जो कि गुस्सा करते हैं, ठीक है, जो रूहानी बीमारी का शिकार नहीं होते। दूसरे किस्म के वो लोग होते हैं जो कि गुस्से की रूहानी बीमारी का शिकार नहीं है, लेकिन वो फिर गुस्सा जो करते हैं ना, वो करते हैं तकब्बुर की वजह से, ठीक है ना। और ऐसा गुस्सा जो होता है ना, ये इंतहाई कंट्रोल्ड गुस्सा होता है, जैसे कि मुरब्बी का गुस्सा कंट्रोल्ड गुस्सा होता है, आपे से बाहर नहीं होता मुरब्बी गुस्सा करने के अंदर, और अल्लाह की खातिर जो गुस्सा करने वाला गुस्सा होता है ना, वो भी कंट्रोल्ड गुस्सा होता है, क्योंकि वो सिर्फ शरीयत के मौके के ऊपर आ रहा होता है। उसी तरह तकब्बुर का शिकार जो बंदा होता है ना, उसका भी गुस्सा कंट्रोल्ड गुस्सा होता है, वो सिर्फ उसके ऊपर निकलता है कि जिसको वो अपने से कमतर समझता है या अपने से बदतर समझता है, ठीक है, तो वो उसके ऊपर गुस्सा निकालेगा, और जिसको वो अपने से बड़ा समझता है उसके ऊपर गुस्सा नहीं निकालेगा, है ना। एक लम्हे में वो किसी पर गुस्सा कर रहा होगा और अगले लम्हे जो है ना, वो किसी दूसरे से अच्छे से बात कर रहा होगा। ये कंट्रोल्ड गुस्सा है और ये रूहानी बीमारी वाला गुस्सा नहीं है, क्योंकि रूहानी बीमारी वाला गुस्सा होता है ना, वो अनकंट्रोल्ड गुस्सा होता है, ठीक है। तो ये क्यों होता है फिर? ये तकबर की वजह से गुस्सा होता है, सही। तो मैं रात, तो इनका जो है ना गुस्सा का मामला ऐसा हुआ कि भाई ये जिस बात को सही समझते थे उसको भी जो है वो उल्टा कहना शुरू हो गया। तो आगे कहते हैं कि जी वो वाकया किया था, उसमें मुख्तलिफ रवायात हैं। इब्ने कसीर रहमतुल्लाह ने बहवाले मोहम्मद बिन इसहाक मुजाहिद रहमतुल्लाह अहम इमाम इमाम तफसीर से नकल किया है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की विलादत के थोड़े ही अरसे बाद बुनियामीन पैदा हुए, तो ये विलादत ही वालदा के की मौत का सबब बन गई, जैसे कि डिलीवरी टाइम के ऊपर मौत हो जाती है, हो जाती थी। अब तो जो है वो टेक्नोलॉजी वगैरह ने इतनी तरक्की कर ली है कि उस वक्त की जो है ना वो मौत अब का जो रेशियो है वो बहुत कम हो गया है, लेकिन पहले जो है ना वो बड़ा ही खतरनाक टाइम होता था, और औरत के बचने के जो है ना वो अक्सर इम्कान नहीं होते थे। तो इसी वजह से ना ये जो हामिला औरत है ना, ये इसको मरजुल मौत का शिकार समझा जाता है, गोया कि ये बस मरने के मर्ज के अंदर मुब्तला हो चुकी है, अब इसका बचना जो है ना वो बड़ा चांस के ऊपर है, बचेगी कि नहीं बचेगी। तो खैर, इनकी भी वादा के साथ भी यही हुआ कि इनका इंतकाल हो गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम और बुन्यामीन दोनों भाई बगैर माँ के रह गए, तो उनकी तरबियत व हिदवानत उनकी फूफी की गोद में, ठीक है। पहली बीवी का पहले इंतकाल हो चुका था, बड़े भाइयों की जो वालदा थी, तो उसके बाद याकूब अलैहिस्सलाम ने दूसरी बीवी से शादी करी थी, जिससे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम होए, फिर उसके बाद बिन्यामीन होए, इनका भी इंतकाल हो गया। तो अब कौन संभाले इन छोटे छोटे दो बच्चों को? यूसुफ अलैहिस्सलाम की अंदाजन बाकी वाकयात को देख करके लगता है कि उस वक्त जो है ना वो गालबन 2-3 साल की उम्र होगी जब बिन्यामीन पैदा हो गई, ठीक है। तो इनको कौन संभाले? तो फूफी यानी बहन थी अपनी मौजूद याकूब अलैहिस्सलाम की। तो अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बचपन से ही कुछ ऐसी शान अता फरमाई थी कि जो देखता उनसे बेहद मोहब्बत करने लगता। तो फूफी का भी यही हाल था कि किसी वक्त उनको नजरों से गायब करने पर कादर नहीं थी। दूसरी तरफ वालिद बुजुर्गवार हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का भी कुछ ऐसा ही हाल था, मगर बहुत छोटा होने की बिना पर जरूरत इसकी थी कि किसी औरत की निगरानी में रखा जाए, इसलिए फूफी के हवाले कर दिया था, ठीक है। यानी छोटे बच्चों को जो है वो बहरहाल एक औरत ही संभाल सकती है, मर्द नहीं संभाल सकता। इसी वजह से अगर तलाक हो जाए तो शुरू के जो साल होते हैं ना, मर्द बेटे के लिए जो है वो एक अलग उम्र होती है और बेटी के लिए जो है वो एक अलग ज्यादा उम्र होती है कि वो माँ के साथ रहेगी, ठीक है ना, और फिर उसके बाद जो है ना वो एक सर्टन उम्र के बाद शरीयत के अंदर है कि वो फिर बाप के पास आएंगे। बेटी भी बाप के पास एक सर्टन उम्र, मुझे याद रखने नहीं आ रहा, शायद बेटी 15 साल की उम्र में माँ के पास आएगी, और बेटा जो है शायद 12-13 साल की उम्र में माँ के बाप के पास आएगा, तो बेटी जो है 15 साल की उम्र में बाप के पास आएगी, उससे पहले जो है ना वो माँ के पास रहेंगे। तो अब तो खैर शरीयत का क्योंकि कोई निजाम ही कोई नहीं, तो इस वजह से कोई अल्लाह के खौफ की वजह से शरीयत को फॉलो करता है तो करता है, वरना कोई करवाने वाला तो है नहीं। तो औरत की निगरानी में रखा गया, इसलिए पति के हवाले कर दिया था। अब जबकि वो चलने फिरने के काबिल हो गए, तो याकूब अलैहिस्सलाम का इरादा हुआ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने साथ रखें। पुपी से कहा तो उन्होंने उजर किया, फिर ज्यादा इसरार पर मजबूर होकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके वालिद के हवाले तो कर दिया, मगर एक तदबीर उनको वापस लेने की ये कर दी कि पुपी के पास एक पटका था, यानी कुछ उनका सामान वगैरह रखने के लिए जो एक आई थिंक बेल्ट टाइप की पटका इसको कहते हैं ना, तो बेल्ट के अंदर भी बहुत सारे खाने वाने होते हैं, उसके अंदर कोई एक वॉलेट टाइप की कोई चीज, पर्स, औरत का तो पर्स, लेकिन उस जमाने में पर्स तो नहीं होते थे, तो पटका था जो हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की तरफ से उनको पहुंचा था, क्योंकि ये भी तो इसहाक अलैहिस्सलाम की बेटी थी और उसकी बड़ी कदर व कीमत समझी जाती थी। ये पटका फूफी ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के कपड़ों के नीचे कमर पर बांध दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम के जाने के बाद ये शोहरत दी कि मेरा पटका चोरी हो गया, फिर तलाशी ली गई, तो वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास निकला। शरीयत याकूब अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक अब फूफी को यह हक हो गया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपना ममलूक बनाकर रखें, अगरचे के छोटे बच्चे, ठीक है, यानी ऐसे छोटा बच्चा भी अगर चोरी का काम कर लेता है ना, तो शरीयत उसको भी सजा देती है, जो भी उस शरीयत के अंदर सजा होती है चोर की। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा कि शरी हुक्म के एतबार से हुप्पी यूसुफ अलैहिस्सलाम की मालिक बन गई है, तो उनके हवाले करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जाहिरी तौर पर शरीयत के मामला का फैसला किया जाता है। अब याकूब अलैहिस्सलाम वहां पे अपना कशफो इल्हाम वगैरह जो है वो यूज करने की बजाय जो जाहिर में मामला हुआ उसके मुताबिक उनको हवाले कर दिया। जो साहिब शरीयत है वो अगर शरीयत को फॉलो नहीं करेगा तो फिर और कौन कैसे करेगा। और जब तक फूफी जिंदा रही, यूसुफ अलैहिस्सलाम उन्हीं की तरबियत में रहे, ठीक है, तो गोया कि अगर हम एज्यूम करते हैं एस्टिमेशन के यू 2-3 साल की उम्र होगी उनकी जब बिन्यामीन पैदा हुए, ठीक है, या 1 साल की उम्र के बाद भी बिन्यामीन पैदा हो सकते थे, खैर, तो फिर जो है ना वो फूफी के साथ जो है वो जाहिर है उस उम्र तक रहे होंगे कि जब तक कि औरत के बगैर गुजारा नहीं बच्चे का, अंदाजन जो है वो 6 साल की उम्र ऐसी होती है कि जब 6 साल में माँ का इंतकाल हो गया था, जब बीबी आमना का, उसके बाद तो दादा और फिर जो है वो चचा, ठीक है, बहरहाल तो 6 साल की उम्र अगर हम रिज्यूम करें तो उसमें जो है ना फिर ये या हो सकता है 5 साल की उम्र में जैसे भूपी ने ये सारा मामला किया और अपने पास रख लिया उनको। अब जो है वो 1-2 साल मजीद उनके पास रहे होंगे, फिर उसके बाद फूफी का भी इंतकाल हो गया, तो अब जो है ना ये आ गए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास, उस वक्त उनकी उम्र होगी कोई 7 या 8 साल, और फिर वही वक्त था कि जबकि भाई जो है ना फिर इनसे हसद में मुब्तला हो गए। तो पीछे हमने कहीं पढ़ा भी था कि जब ये सारा वाकया पेश आया था या यूसुफ अलैहिस्सलाम को गार में फेंकने, सॉरी यानी कुएं में फेंकने वाला वाला वाकया, तो उस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र कोई 8-9 साल ही होगी, ठीक है। तो हुआ ये कि ये वाकया था कि जिसमें चोरी का इल्जाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर लगा, और फिर हर शख्स पर हकीकत हाल रोशन हो गई कि यूसुफ अलैहिस्सलाम चोरी के अदना शुबे से भी बरी हैं। हुप्पी की मोहब्बत ने उनसे ये साजिश का जाल फैलवाया था। भाइयों को भी यह हकीकत मालूम थी, इसकी बिना पर किसी तरह जेबा नहीं था कि ये उनकी तरफ चोरी को मंसूब करते, मगर उनके हक में भाइयों की जो ज्यादती और बेरहमी अब तक होती चली आई थी, ये भी उसी का एक आखिरी जुस, यानी अभी भी जो है ना वो ठोकर खा खा करके भी अभी भी जो है ना वो दम नहीं निकला था, नफ्स जो है ना वो अभी तक सरकश ही था, तो ये एक आखिरी वार जो है ना ये अभी भी कर गए यूसुफ अलैहि सलाम के ऊपर। तो एक और भी बात पता चलती है कि इसहाक अलैहिस्सलाम की बेटी थी, राइट, लेकिन मोहब्बत के हाथों, खुसूसन औरत, ठीक है ना, खुसूसन औरत जब जज्बात से मजबूर हो जाती है ना तो अच्छी अच्छी भी जो है ना फिर हरकत कर जाती है, ठीक है, तुमसे भी जो है ना ये साजिश वाला मामला हो गया। अब जाहिर है ये हकीकत तो नहीं थी, सच तो नहीं था, लेकिन मोहब्बत के हाथों ऐसी मजबूर हुई थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है अपने पास रख लिया इस तरीके से। असर रहा यूसुफ को फी नफ्स ही वलम युबदिहा लहुम, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों की ये बात सुनकर अपने दिल में रखी कि ये लोग अब तक भी मेरे दर पे हैं कि चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं, मगर इसका इजहार भाइयों पर नहीं होने दिया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनकी ये बात सुनी है और इससे कुछ असर लिया। यानी यार ऐसा अपने आप को काबू में रखा, ऐसा तहम्मुल, ऐसा हिल कि भाइयों को पता भी नहीं लगा कि इनके ऊपर कितनी बार गुजरी है ये वाली बात। قال انتم شر مكان والله اعلم بما تصفون। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने दिल में कहा कि तुम लोगों की बुरे दर्जे और बुरे हाल में हो कि भाई पर चोरी की तोहमत जानबूझ कर लगाते, हालांकि तुम्हें पता है कि मैंने चोरी नहीं करी थी। और फरमाया कि अल्लाह ताला ही ज्यादा जानने वाले हैं कि जो कुछ तुम कह रहे हो वो सही है या गलत है। पहला जुमला तो दिल में कहा गया है, ये दूसरा जुमला मुमकिन है कि भाइयों के जवाब में ऐलानन कह दिया हो। ठीक है, वल्लाहु आलमु बिमा तसिफून। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा जुमानी जुमला था कि जिससे कि सुनने वालों को पता नहीं चले कि ये असल में किस किस वजह से कहा गया है। ये तो इस वजह से कह रहे थे, लेकिन सुनने वाले को सुन करके लगे कि जैसे कि तुम लोगों ने चोरी करी है ना, तो इस वजह से यूसुफ अलैहिस्सलाम चोरी की वजह से जो है ना वो तुम्हारे भाई ने चोरी करी है, इस वजह से यूसुफ अलैहिस्सलाम ये वाली बात कह रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा भी मुमकिन है कि ये उन्होंने जोर से कह दिया ये वाला जुमला, लाइर अंतुम शर्र मकानन, ये वाला जुमला तो उन्होंने जोर से हरगिज नहीं कहा। قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين। برادران یوسف نے جب دیکھا کہ کوئی بات چلتی نہیں اور بنیامین کو یہاں چھوڑنے کے سوا چارہ نہیں، تو عزیز مصر کی خوشامد شروع کر دی اور یہ درخواست کی کہ اس کے والد بہت بوڑھے ہیں اور ضعیف ہیں، اس کی مفارقت تم سے برداشت نہ ہوگی، اس لیے آپ اس کے بدلے میں ہم میں سے کسی کو گرفتار کر لیں۔ یہ درخواست آپ سے ہم اس امید پر کر رہے ہیں کہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ بہت احساس کرنے والے ہیں، یا یہ کہ آپ نے اس سے پہلے بھی ہمارے ساتھ احسان کا سلوک فرمایا، لاسٹ ٹائم جب ہم آئے تھے تو آپ نے ہمیں اتنا اچھے سے رکھا ہے، ہمارا اعزاز کیا، اکرام کیا۔ اور ٹھیک ہے، بہرحال ان کو بھی امید لگی تھی، تو جب اس قسم کا بڑوں کے ساتھ معاملہ آتا ہے تو جب انسان پھنس جاتا ہے اور سامنے کوئی بڑا ہوتا ہے تو خوش آمد کرنی پڑتی ہے ان کی کہ بھائی آپ ایسے ہی مان جائیں۔ قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا مطاعنا عنده انا اذا لظالمون۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی درخواست کا جواب ضابطے کے مطابق یہ دیا کہ یہ بات تو ہمارے اختیار میں نہیں کہ جس کو چاہیں پکڑ لیں، بلکہ جس کے پاس مال مسروقہ برآمد ہوا اگر اس کے سوا کسی دوسرے کو پکڑ لیں تو ہم تمہارے ہی فتوے اور فیصلے کے مطابق ظالم ہو جائیں گے، کیونکہ تم نے ہی یہ کہا ہے کہ جس کے پاس مال مسروقہ برآمد ہو وہی اس کی جزا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بھائی ہم نے آخر کو ایک سلطنت چلانی ہے، ہم نے ایک نظام چلانا ہے، اگر ہم جو ہے نا وہ اس قسم کی یعنی بدعنوانیاں کرتے رہیں گے، کرپشن کرتے رہیں گے، کسی کے ساتھ کچھ کریں گے، کسی کے ساتھ کچھ کریں گے نا، تو یہ ہمارا نظام جو ہے نا وہ چل نہیں پائے گا۔ سو وی آر باؤنڈ بائی لا۔ ٹھیک ہے، تو جب بھی کوئی سلطنت جو ہے نا وہ لمبا عرصے چلتی ہے نا، تو وہ ایسی چلتی ہے کہ گورنمنٹ کو یہ میک شور کرنا پڑتا ہے کہ وہ اپنے ملک کے اندر جو ہے نا وہ جو بھی ان کی لا ہے اس کو اپہولڈ کریں، اس کو مینٹین کریں۔ ٹھیک ہے، ایسے جو ہے نا پھر سلطنتیں لمبی چلتی ہیں۔ ظلم ایک ایسا ایسا معاملہ ہے، یعنی ظلم سے مراد یہ ہے کہ کمزور کو پیٹ مارنا، کمزور کو پیٹنا، رائٹ، اور جو ذرا طاقتور ہے یا دولت مند ہے اس کو جو ہے وہ سزا نہ دینا، یہ پولیٹکس کے اندر یا یہ پولیٹیکل سسٹم یا جس کو کہتے ہیں ایڈمنسٹریٹو اتھارٹیز کے اندر یہ ظلم کہلاتا ہے، ورنہ تو ظلم تو ہر گناہ کہتے ہیں نا، شریعت کے اندر تو ہر گناہ جو ہے وہ ظلم ہے، لیکن پولیٹیکلی سپیکنگ ظلم کا لفظ جو ہے وہ اس موقع کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جب کمزور کو سزا دی جا رہی ہے اور ظالم کو جو ہے نا وہ چھوٹ دی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے نا، یا کسی کے معاملے کے اندر جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں بد اعتدالی وغیرہ کی جا رہی ہے، تو اس وقت ہے نا پھر سلطنتیں جو ہے نا وہ زیادہ عرصہ نہیں چل سکتی۔ ये जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी, फेरोज वाली, फिरौन वाली है ना, ये सारे के सारे वो ये फराइना ही जो है वो इनके जो बादशाह हुआ करते थे ना उनको कहा जाता है। तो ये जो यानी वेस्टर्न हिस्टोरियंस हैं तो उनसे ही सुना है बस, मैंने कोई आपने तो तहरी करी नहीं है कि ये दुनिया के अंदर was probably the second. कह रहा था कि रशियन एम्पायर थी वो भी बहुत लंबी चली थी, लेकिन 1,500 2,000 साल से ज्यादा नहीं। ये इजिप्शियन एम्पायर जो है ये सबसे ज्यादा लंबी कहलाती है। तो बहरहाल तो उस जाहिर है कि रूल्स को फॉलो करते थे, तो इस वजह से अब इवन फिरौन जो है वो भी बनी इसराइल के ऊपर तो जुल्म करता था, लेकिन किबतियों के अंदर उसका जो है ना मामला ऐसा नहीं होता था। बहुत ही यानी तरक्याती काम भी करता था और लोगों के दरमियान जो है वो उसने अपना इंसाफ वगैरह का सिस्टम भी रखा हुआ था, तो चल रहा था उसकी सल्तनत जो। बहरहाल एक मैसेज यहाँ पे किसी ने सवाल पूछा था कि ये तो झूठ हो गया, तो भाई बजाय तो झूठ ही लगता है। जब भी तो इस आदमी ने कह भी दिया था ना कि भाई जज्बात की रौ में बह करके इवन अच्छे खानदान के लोगों से भी मामला हो जाता है, ठीक है ना। इंसान 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 होता है, ये नहीं होता कि किसी की औलाद है तो उससे गलती नहीं हो सकती है ना। मतलब ये बाकी जो भाई थे ये किसके औलाद थे, ये भी तो नबी की औलाद थे कि नहीं थे, है? तो याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद ही का सारा किस्सा पढ़ रहे हैं। तो याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद से जिस तरह गलती होगी, तो भाई इसहाक अलैहिस्सलाम की एक औलाद से गलती नहीं हो सकती, जो कि बेटी थी वो नबी तो नहीं थी ना। नबी मासूम होते हैं ना, बेटी तो नबी नहीं होती, ठीक है। तो उनसे गलती हो गई, सही है। और दूसरी बात यह है कि मतलब औरत का भी नाम इस वजह से लिया कि भाई जज्बात ज्यादा गालिब होते हैं ना औरत के अंदर। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना कि औरतें जो हैं वो बहुत कम कामिल हुई हैं, कामिल औरत बहुत कम हुई है। मरियम अलैहिस्सलाम, आसिया अलैहिस्सलाम और हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला, है ना, ये कामिल औरतें हुई हैं, वरना औरतों में कामिल नहीं होती है, ठीक है। यानी कुछ ना कुछ नुक्स, कुछ ना कुछ गलतियां कोताहियां वगैरह जो है वो हो जाती है, उनसे और ज्यादा हो जाती है। रिजाल जो है मर्दों में कामिल बहुत हुए हैं, क्योंकि मर्दों को अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी भी ज्यादा दी हुई होती है, और जज्बात का जो है ना वो गुलाम उमूमी तौर पर मर्दों को अल्लाह ताला ने नहीं बनाया होता, ठीक है। बच्चा नहीं पैदा करना होता ना मर्दों ने, जज्बात की इतनी जरूरत नहीं होती है। एनीवेज तो ये बात मैंने पहले कह दी थी, कह रहा हूँ। अच्छा एक मिनट, चैट बिल्कुल कुप्पी की है साजिश का जो पिंजी, तो उम्मीद है कि आपके पास हो जाए। अच्छा आगे फरमाते हैं कि हाँ, قال معاذ الله ان ناخذ الا ما وجد ما وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون। यूसुफ अलैहि सलाम ने अपने भाइयों की दरख्वास्त का जवाब, हाजिर साहब से वाली बात सारी हो गई ना इजिप्शियन सिविलाइजेशन के साथ। अच्छा फलम मस्तई असुमिन हो खलसु नजिया, यानी जब बरादरान यूसुफ बुनियामीन के रिहाई से मायूस हो गए तो बाहम मशवरे के लिए किसी अलहदा जगह में जमा हो गए। काला कबीर हम से लेकर आखिर तक, अलख का मतलब इलल आखिर, यानी इस आयत के आखिर तक, तो इसको लिखा नहीं है पर। तो उनके बड़े भाई ने कहा कि तुम्हें ये मालूम नहीं कि तुम्हारे बाप ने तुमसे बुनियामीन के वापस लाने का पुख्ता अहद लिया था, और ये कि तुम उससे पहले भी यूसुफ अलैहिस्सलाम के मामले में एक कोताही और गलती कर चुके हो, इसलिए मैं तो अब मिस्र की जमीन को उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरे वालिद खुद ही मुझे यहाँ से वापस आने का हुक्म न दें, या अल्लाह ताला की तरफ से बजरिया वही मुझे यहाँ से निकलने का हुक्म हो, और अल्लाह ताला ही बेहतरीन हुक्म करने वाले, ठीक है। तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने देखे थोड़ी सी इसकी डिफरेंट तफसीर फरमाई कि या तुम वालिद मुझे बुलवा लें, ठीक है, या अल्लाह ताला कोई तदबीर बना लें कि बुनियामीन जो है वो छूट जाए अजीज के कैद से, ठीक है। और उनके जो मुरीद हैं, मुरीद खास और खिलाफ खलीफा साहब, वो तफसीर जो है वो अपने शेख की तफसीर जानने के बावजूद वो तफसीर जो है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ बयान फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला के जरिए से बजरिया वही मुझे यहाँ से निकलने का हुक्म हो, और अल्लाह ताला ही बेहतरीन हुक्म करने वाले, ठीक है। तो इस तरह से ये जो इल्मी इख्तलाफात होते हैं ना वो उलमा के दरमियान भी होते हैं, छोटे उलमा बड़े उलमा से, या अपने जो शेख होते हैं या अपने जो है वो उस्ताद होते हैं उनसे इल्मी इख्तलाफ जो है ना ये कोई नई बात नहीं है और ये कोई बुरी बात नहीं है। हाँ हमें समझ में नहीं आता ये बातें तो वो हमारा कसूर है, हमें अपनी अकल को ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए जिस तरह बाकी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। तो ये कोई इतने कॉम्प्लिकेटेड मसला नहीं है ये, ठीक है ना, कि भाई इल्मी इख्तलाफ जो है वो शेख से जो है वो उसके किसी शागिर्द ने कर लिया, उस्ताद से जो है वो उसके शेख से मुरीद ने कर लिया, उस्ताद से जो है वो शागिर्द ने कर लिया, ठीक है। इल्मी इख्तलाफ और इसकी ज़ाहिर हदूद होती हैं, तमीज तरीका होता है, अदब का दामन जो है वो हरगिज इजाजत नहीं होती कि आप अदब का दामन जो है वो हाथ से छोड़ दें, आप बदतमीजी पे उतर आए, आप जो है वो बेके हतक और रुसवाई करना शुरू हो जाए, इसकी तो बिल्कुल गुंजाइश नहीं। इसकी तो शेख के साथ और उस्ताद के साथ तो क्या, इसकी तो किसी आम मुसलमान के साथ गुंजाइश नहीं कि आप उसकी बेअदबी और उसकी जो है ना वो जिल्लत और रुसवाई के ऊपर उतर आए किसी इख्तलाफ की वजह से, ठीक है ना। लेकिन अदब तमीज के साथ किसी बराबर वाले के साथ भी इख्तलाफ किया जा सकता है, किसी बड़े के साथ भी इख्तलाफ किया जा सकता है, ठीक है। हमारे दीन ने और हमारे कुरान मजीद ने, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर तो ये सारी चीजें यानी इन सब की जो है ना वो इशारे रखे हुए हैं, हत्ता के हम तो यानी ये भी पढ़ चुके हैं और बहुत क्लियर है, कोई इसके अंदर मसला कॉम्प्लिकेटेड मसला नहीं है कि नबी के साथ जो है वो एक इंसान तो क्या, अशरफुल मखलूकात तो क्या, एक परिंदे ने जो है वो जो चीज परिंदे को मालूम थी तो उसने नबी को भी जाकर बता, ना कोई हद अदब, अदब का ख्याल रखो, ये तुम कैसी, तुम्हारी जरूरत कैसी हुई कि तुमने जुबान दराजी कर ली, जुबान तुमने खोल ली, सलमान सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार के अंदर खुद खुद ने जुबान खोल ली, मार दो उसको, कत्ल कर दो उसको, खत्म कर दो उसको, इसके ऊपर जो है वो क्या कहते हैं बदतमीजी का फतवा इसके ऊपर जारी कर दो और इसके जो है वो पता नहीं क्या कर दो, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता भाई, अल्लाह ताला ने हुदूद का वाकया रखा है ना, किसी वजह से रखा है कि बस ऐसी किस्से कहानी है जिस तरह बाकी चीजें किस्से सब किस्से कहानी है, बस जो किस्से कहानी की नीयत से कुरान पढ़ता है उसके लिए हर चीज ही किस्से कहानी है, रेलेवेंस कोई नहीं है रियल लाइफ के साथ किसी भी चीज की, क्योंकि किस्सा कहानी की कोई रेलेवेंस रियल लाइफ के साथ नहीं है। लेकिन जो कुरान मजीद को किताब हिदायत समझता है ना, उसकी उसके लिए तो एक एक लफ्ज के अंदर रेलेवेंस है, एक एक लफ्ज के अंदर जो है ना वो प्रैक्टिकलिटी है, रियलिटी है किताब हिदायत की। तो हमारा अपने अप्रोच के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस अप्रोच से जो है ना कुरान मजीद को पढ़ते हैं, वरना पढ़ने वाले भी जो है ना वो गुमराह हो जाते हैं। अल्लाह ताला इसी के जरिए से जो है वो अवल्लु बिही कसीरा वो यहदी बिही कसीरा, अल्लाह ताला कसीर को जो है वो गुमराह कर देते हैं और कसीर को जो है वो हिदायत अता फरमाते हैं, ठीक है। तो कोई वजह होती है जिसकी वजह से लोग गुमराह होते हैं कुरान मजीद पढ़ करके, और कोई वजह होती है कि जिसकी वजह से लोग हिदायत पा जाते हैं कुरान मजीद पढ़ करके। तो मुफ्ती शफी अहमतुल्लाह ने बहुत सारे मुकाम के ऊपर अपने शेर से जो है वो इख्तलाफ किया। तो ये बड़े भाई जिनका कलाम बयान हुआ है, हाँ, अब्बास ने फरमाया कि यहूदा है, यानी इनका नाम ही यहूदा था और इन्हीं के नाम से जो है ना वो इस कौम का नाम आगे चला, यहूदी कौम, ठीक है। लेकिन यहूदी कौम का उमूमी तौर पर जो यहूदी लफ्ज का इस्तेमाल हुआ ना, तो वो उमूमी तौर पर जो है वो दुश्मनान के लिए इस्तेमाल, यहूद व नसारा, राइट, यहूद और नसारा का इस्तेमाल जब होता है ना, तो वो नहीं होता कि जी यानी नेक लोग थे ये, बल्कि दुश्मनान इस्लाम के लिए यहूदी का लफ्ज इस्तेमाल होता है। बनी इसराइल का जो लफ्ज है ये भी नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में भी इस्तेमाल हुआ है, लेकिन पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी, भाई वो उलमाए बनी इसराइल में से था, या बनी इसराइल का एक बड़ा परहेजगार इंसान था, बड़ा इबादत गुजार इंसान था, 1,000 साल उसने जो है वो दिन में जिहाद किया और रात में जो है वो इबादत करी, ये नहीं आता कि एक बड़ा परहेजगार यहूदी था, ये आपने कभी सुना, मैंने तो नहीं सुना, अगर आपने सुना हो तो मुझे बता दीजिए, मेरे किताब हो जाए कि 1 साल जो है वो एक यहूदी, 1,000 साल एक यहूदी ने जो है वो अल्लाह की इबादत करी रात के वक्त और दिन में जो है वो जिहाद किया, बनी इसराइल का लफ्ज आता है, ठीक है ना। और यहूदी का जब लफ्ज आता है तो वो जो साजिशें करने वाले और जो है ना वो नबी अलैहिस्सलाम के कत्ल की साजिश है, नबी अलैहिस्सलाम की इख्तलाफ की साजिश है, ठीक है। बहरहाल तो ये लफ्ज निकला कहाँ से, ओरिजिन इसकी क्या है, वो उन भाइयों में से एक भाई का नाम यहूदा। अच्छा, और ये अगरचे उम्र में सबसे बड़े नहीं थे मगर इल्म फजल में सबसे बड़े थे, ठीक है। अब इनकी औलाद ने उस इल्म फजल का जो है वो अचार डाल करके अपने खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तकब्बुर का शिकार हो गया, तो फिर वो आगे वालों का कसूर होता है। बाज़ मुफस्सरीन ने कहा कि रुबेल है जो उम्र में सबसे बड़े हैं और यूसुफ अलैहिस्सलाम के कत्ल ना करने का मशवरा उन्होंने ही दिया था, और बाज़ ने कहा कि ये बड़े भाई शमरून है जो जाहो रुतबे के एतबार से सब भाइयों में बड़े समझे जाते हैं, ठीक है। जा होता है किसी के अंदर ऐसे कोई पर्सनालिटी रखी होती है कि अगरचे कि वो उम्र में बड़ा नहीं होता, लेकिन लोग उसको दे स्टार्ट लुकिंग अप टू हिम। बहरहाल दो भी थे, इरजू इला अबीकुम, यानी बड़े भाई ने कहा कि मैं तो यही रहूंगा, आप सब लोग अपने वालिद के पास वापस जाएं और उनको बताएं कि आपके साहिबजादे ने चोरी की और हम जो कुछ कह रहे हैं वो अपने चश्मदीद हालात हैं कि माल मसरूका उनके सामान में से हमारे सामने बरामद हुआ। When does a student reach a level that he does ilmi ikhtilaf with the teacher? When does a student reach a level that he does ilmi ikhtilaf with the teacher? इसके लिए कोई यानी लिखी पढ़ी हुई कोई ऐसा लेवल तो नहीं है कहीं पे लिखा हुआ कि वो इल्मी इख्तलाफ विद द टीचर करना शुरू हो जाए, लेकिन इसके लिए अगर आप चले यानी समझ लें कि व्हेन व्हेन कैन ए स्टूडेंट बी एक्सेप्टेड टू हैव इल्मी इख्तलाफ विद द टीचर, ठीक है ना। चले ये लेवल से मुझे भी बात रात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन ये किस वक्त शागिर्द के लिए काबिले कबूल हो जाता है कि वो अपने उस्ताद से जो है ना वो इल्मी इख्तलाफ कर सकता है, किस वक्त किसी मुरीद के लिए काबिले कबूल हो जाता है कि वो अपने शेख के साथ इल्मी इख्तलाफ किसी मामले के अंदर कर सकता है, ठीक है। किस वक्त क्या उसके अंदर आ जाए कि जिसके बाद जो है ना उससे इख्तलाफ जो है वो कबूल कर दिया जाए, ठीक है ना। अच्छा, कबूल जो है वो हर कोई नहीं करता, लेकिन अच्छे लोग समझ रखने वाले लोग कबूल कर लेते हैं, हर कोई तो नहीं कबूल करता हर बार, लेकिन जो अच्छे लोग हैं जो समझ रखने वाले लोग हैं वो उसको कबूल कर लेंगे। तो वो कब वक्त आता है, अगर आप थोड़ा सा अकल लड़ाएं, अब तो ये मामला जरा आसान हो गया इसका जवाब देना। जी थोड़ा सा अटेम्प्ट करके देखें अगर। जब उसे उलूम इस्लामिया पढ़ाने की सनद मिल जाए सनद हासिल हो जाए उस्ताद बनने की नहीं, सनद तो बड़ी जल्दी हासिल हो जाती है, पढ़ाने की सनद है। 8 साल का आलिम कोर्स कर लिया, और आजकल तो वैसे भी 4 साल में भी कुलियत शरिया की डिग्री मिल गई किसी को, किसी को कोई डिग्री मिल गई, तो उसके बाद जो है वो इजाजत हो गई, द शेख हिमसेल्फ गिव्स द इजाजत। नहीं, ये भी कोई जरूरी नहीं है, वो तो शेख हिमसेल्फ गिव्स द इजाजत, तो अब जरूरी तो नहीं है कि वो इजाजत खिलाफत वाला सिलसिला हो वहां पर, जैसे जो शागिर्द होते हैं तो वो कर सकते हैं सनद मिलने से पहले भी कर सकते हैं इख्तलाफ, मुरीद जो है वो खिलाफत मिलने से पहले भी जो है इख्तलाफ कर सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छा उन्होंने जवाब दिया, तकवा और आजिज एटलीस्ट बोथ शुड पोजेस सेम लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज। आप तो जाएगा डिग्री वाले, ठीक है, तो आप तो नहीं डिग्री, ठीक है ना, डिग्री के ऊपर थोड़ी देर पहले ही है यार, फिर एक्चुअली कुछ सुन भी रहा था, इंशाल्लाह आप लोग शेयर करें। तो डिग्री विग्री कोई नहीं होती इस किस्म की जिसमें कि इख्तलाफ करने की इजाज़त लिखी होगी, जी आप जो है ना वो हम आपको इजाज़त देते हैं सनद के अंदर कि अब आप जो है वो इख्तलाफ कर सकते हैं अपने मशाइख से, अब अपने टीचर से इख्तलाफ कर सकते हैं, नहीं ऐसी कोई डिग्री एग्जिस्ट नहीं करती। बहरहाल तकवा और आजिज़ी, ठीक है, ये क्लोज जवाब है लेकिन इतना ज्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं है। देखें, उस वक्त उसके लिए जायज हो जाता है या उस वक्त जो है वो अहले हक उसके इख्तलाफ को कबूल कर लेते हैं जब उसके अंदर जो है ना उसकी अपनी रूहानी इस्लाह इस दर्जे की हुई हुई हो कि वो इख्तलाफ में और बेअदबी में तमीज करने के काबिल हो चुका, इख्तलाफ में, इल्मी इख्तलाफ में और बेअदबी में तमीज का दायरा यानी हाथ से उसके ना छूटता, अदब का दायरा बल्कि इससे भी आगे बढ़ करके मोहब्बत में उसके फर्क ना आता, अपने शेख के लिए अपने उस्ताद के लिए मोहब्बत अकीदत अदब तमीज मर्तबा इसमें फर्क ना आता, ठीक है। ये है वो लेवल कि जिसके बाद जो है ना उसके लिए इख्तलाफ करना जायज होता है, और अगर ये नहीं है तो फिर चाहे वो कितनी ही बड़ी दलील लेकर के क्यों ना आ रहा, राइट, कितना उसने जो है वो अफलातून बन गया है, उसने किताबें खंगाल ली हैं, उसके पास उलूम की जो है वो लंबी जो है वो फहरिस्त आ गई है, और उसको सब कुछ समझ में आना शुरू हो गया है, लेकिन अदब का दायरा ये नहीं है अपने शेर के लिए, मोहब्बत नहीं है अपने शेर के लिए, बल्कि वहां भी मैं मुझे ज्यादा आ गया है, अब जो है ना मैं अपने शेर से बहस करूंगा, मैं शेर को नीचा दिखाऊंगा, मैं अपने शेर को जो है ना वो ठीक करके दिखाऊंगा और ये करूंगा वो करूंगा, राइट। अब वो कितनी ही अच्छी दलील के साथ इख्तलाफ करता हो उसके लिए काबिले कबूल नहीं, ठीक है, सही है भाई, सही। इमाम शाफी, इमाम अहमद इबन हम्बल की मिसाल, बेशुमार मिसालें, यानी अभी तो हमने हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह मुफ्ती शफी की मिसाल कितनी दफा, कई कई दफा हम इस बात को मेंशन कर चुके हैं इसी क्लास के। आप हमारे हजरत बा अदब की किताब उठा के पढ़ लें, बा अदब बा नसीर, ठीक है ना, उसके अंदर आखिरी गालबन चैप्टर है इख्तलाफ के आदाब, इख्तलाफ के आदाब, अल्लाह के आदाब से वो किताब शुरू होती है, बारगाह इलाही के आदाब से, और इख्तलाफ के आदाब के ऊपर जाकर खत्म होती है, उसके अंदर यही है हमारे अकाबरीन के आपस के इख्तलाफात, उलमा के आपस के इख्तलाफात, ठीक है। बहरा तो हम समझते हैं ना कि हम जब तक ना अपने शेख को चढ़ाए नहीं ना, उड़ाए नहीं ना, तो उस वक्त तक मोहब्बत नहीं हो सकती, यानी मोहब्बत की अलामत हमारे नजदीक क्या है, शेख को उड़ाना, शेख को जो है वो इल्मुल के दर्जे पे फायज करना, राइट, और शेख को जो है ना वो मासूमियत के दर्जे पे फायज करना, नबियों वाला मासूमियत वाले दर्जे पे फायज करेंगे तब मोहब्बत है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर मोहब्बत नहीं, हालांकि इसका ताल्लुक जो है वो नहीं है हमारे दीन के साथ, इस कॉन्सेप्ट का कोई ताल्लुक नहीं है, खाली हमारी जहालत की वजह से और हमारे तवाहम परस्ती की वजह से हमने इस किस्म के जो है ना वो डेफिनेशन और स्टैंडर्ड्स बनाए, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, पूरी बात अफसोस। आप हम अपने दौर की क्या बात करते हैं, आप नबी अलैहिस्सलाम के और सहाबा की सीरत को काट के देखें, ठीक है, तो बहरहाल क्या लिखा किसी ने कि जिस इल्म और समझ की बुनियाद पर इख्तलाफ किया है वो इल्म और समझ भी तो उस्ताद और शेख से ही हासिल किया है, भाई जरूरी नहीं है कि सारा इल्म जो है वो अपने उसी उस्ताद और अपने शेख से ही हासिल किया हो ना, बहुत सारे दूसरे भी तो सोर्सेज होते हैं, लेकिन जिसको मोहब्बत होती है ना अपने शेख से या अपने उस्ताद से, उसने इल्म अगर दूसरे सोर्सेस से भी हासिल किया होता है ना, वो फिर भी उसका सबब अपने शेख को ही समझ रहा हो, है ना, और वो क्रेडिट जो है ना वो फिर भी अपने शेख को ही दे रहा हो, फिर भी अपने उस्ताद को ही दे रहा हो, ठीक है ना, और जिसने जो है ना जिसका जिसका तज़किया नहीं हुआ होता है, जिसने अदब मोहब्बत तमीज वगैरह नहीं सीखी होती है, अपनी रूहानी बीमारियों का जिसका इलाज नहीं हुआ होता है, तो वो जो है ना क्या करता है, वो बहाने तलाश करता है कि ये बात तो मैंने अपने शेख से कोई थोड़ी सीखी है, ये बात मैंने अपने उस्ताद से कोई थोड़ी सीखी है, तो इस वजह से जो है ना वो मुझे अपने उस्ताद की इस मामले में क्या जरूरत है इज्जत करने की, है ना, उस्ताद को तो ये बात पता नहीं है, मुझे ये बात पता हो गई, ये मसला जो है ना वो होता है इंसान के अपने नफ्स के साथ, ठीक है ना, नफ्स सुधर जाए ना इंसान का तो फिर वो काम करता है तो वो अच्छा काम, अच्छा यानी खूबसूरत काम बन जाता है, और अगर उसका नफ्स ना सुधरा हुआ ना तो वो अच्छा काम भी कर रहा होता है ना तो वो भी गंदा बनता है, ठीक है, अब ये नहीं कहेंगे कि भाई गंदा काम जो होता है वो अच्छा बन जाता है, ये तो ऐसा नहीं होता, जो गंदा है शरीयत में वो गंदा ही है, नफ्स अच्छा है तो गंदा काम अच्छा तो नहीं बन सकता, लेकिन अगर नफ्स गंदा है ना तो अच्छा काम गंदा जरूर सकता है, ठीक है ना, आसान सा उसूल है, उम्मीद है कि कोई मुश्किल नहीं होगी उसको समझने में, तो क्लास कितनी हो गई, टाइम जो है वो खत्म हो गया, खत्म होते इरजू इला अबीकुम के, यानी बड़े भाई ने कहा कि मैं तो यहीं रहूंगा, आप सब लोग अपने वालिद के पास वापस जाएं और उनको बताएं कि आपके साहिबजादे ने चोरी की और हम जो कुछ कह रहे हैं हाँ ये हो गया, वमा कुन्ना लिल्गैब हाफिज़ीन, 1 मिनट, ओ टाइम काफी ऊपर हो गया, तो इस वजह से बाकी बंदा इंशाल्लाह अगली क्लास में, कोई और सवाल वगैरह अगर किसी का है तो सुन सकते हैं, आमीन, जज़ाकुम अल्लाह, आपको भी सलामत रखे, हम सबको सलामत रखे जिस्मानी रूहानी हर एतबार से, जज़ाकुम अल्लाह खैर, वा आखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सलाम।